अस्सलाम वालेकुम साथियों, आइए अब हम समंदर का बादशाह हार गया उसका पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तवील सफ़र तय करने के बाद शाम को वो समंदर के बादशाह के महल में दाखिल हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इतला दी। पानी का बादशाह खुद इससे मिलने आया और आते ही शहजादे पर गुस्से से चीख पड़ा, तुम इतने बरस बाद क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। तुम्हारी इस गलती की सज़ा ये है कि वो महल के सामने बंजर और नोकदार पत्थरों से भरी हुई ज़मीन है। इस ज़मीन में गहरे घड़े भी हैं। कल सुबह तक इस ज़मीन को ऐसा साफ कर दो कि ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाए, ना इसमें कोई पत्थर हो, ना वो ऊंची नीची रहे और ना उसमें कोई गढ़ा बाकी रहे। फिर इसमें अनाज के पौधे इतने बड़े हों कि अगर कोई चिड़िया इनमें छुपना चाहे तो छुप सके और बिल्कुल नज़र ना आए। अगर ऐसा ना किया तो सर तन से जुदा कर दूँगा। शहजादा समंदर के बादशाह के पास से रोता हुआ जा रहा था कि महल के कमरे की एक खिड़की से वेसीलिसा ने ऐवान को देख लिया। उसने इससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है? मैं क्यों ना रोऊं? समंदर के बादशाह ने कहा है कि एक रात में वो सामने ज़मीन हमवार करो, पत्थर हटाओ और फसल उगाओ। फसल इतनी बड़ी हो कि इसमें चिड़ियां छुपना भी चाहें तो छुप सकें। अगर ऐसा ना कर सका तो वो मेरा सर तन से जुदा कर देगा, ऐवान ने रोते हुए कहा। ये तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आगे आएंगी। रात से सुबह बेहतर है, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। शहजादा ऐवान सोने के लिए चला गया। वेसीलिसा इस पथरीले ना हमवार मैदान में आई और ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहा, ए मेरे वफ़ादार मुलाज़िमों, उठो और आओ। तो तमाम पत्थर इस ज़मीन से दूर फेंक दो, ज़मीन हमवार कर दो, फिर इसमें हल चलाओ, अनाज बोओ। इस तरह बोओ के सुबह तक इतनी बड़ी फसलें हो जाएं कि चिड़िया अगर छुपना चाहें तो छुप सकें। सुबह सवेरे जब ऐवान उठकर मैदान में आया तो सब कुछ तैयार था। वो समंदर के बादशाह के पास गया। समंदर के बादशाह ने पूछा, मेरे हुक्म की तामील हुई या नहीं? आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार है, आप देख सकते हैं, शहजादे ने जवाब दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, समंदर के बादशाह ने जवाब दिया। अब ज़रा ये दूसरा काम तो कर दो, मेरे 300 गोदाम हैं, हर गोदाम में 300 गंदम के खोशे हैं, हर खोशे में 300 बालियां हैं, ये चमकीले सफ़ेद गंदम हैं। तुम खोशों से गंदम को इस तरह अलहदा कर दो कि वो ना तो बालियां टूटे और ना बालियां खोशों से अलहदा हों। फिर गंदम को बारीक पीसो। अगर मेरा यह हुक्म सुबह तक पूरा ना करोगे तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूँगा। जैसा आपका हुक्म हो जहाँ पना, ऐवान ने जवाब दिया और चल पड़ा। बाहर आकर वो पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक खिड़की खुली और वेसीलिसा ने खिड़की में से झाँक कर ऐवान को आवाज़ दी, क्यों रो रहे हो ऐवान शहजादे? क्यों ना रो? ये कहकर शहजादे ने तमाम हाल बताया। रो नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी आफतें अभी बाकी हैं। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। तुम अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐवान शहजादा सोने के लिए चला गया। वेसीलिसा दानिशमंद महल से बाहर निकल आई और पुकार कर कहने लगी, ए रिंगने वाली चूटियों, इस जहां में तुम जितनी भी हो चली आओ और अब्बा के गोदाम में जितनी भी गंदम है उसे एहतियात से निकाल कर पीस डालो। काम सफाई और महारत से करना। सुबह सवेरे समंदर के बादशाह ने ऐवान को बुलाया और काम के बारे में पूछा। शहजादा ऐवान ने कहा कि मैं आपका हुक्म बजा लाया हूँ, आप देख सकते हैं। समंदर के बादशाह ने कहा, चलो दिखाओ। ऐवान और समंदर का बादशाह गोदामों में गए। हर तरफ सफ़ेद आटे के ढेर लगे हुए थे। समंदर का बादशाह बहुत खुश हुआ, ऐवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे ऐवान, मेरा एक और काम करो। कल सुबह फूटने तक मेरे लिए मोम की बड़ी सी इबादत गाह तो बनाओ। मोम असली होना चाहिए और इबादतगाह इतनी बड़ी हो कि मेरा सारा शाही ख़ानदान एक वक्त में इसमें इबादत कर सके। ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी काम है। अगर कल सुबह तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुम्हारे जिस्म पर सर नहीं रहेगा। जाओ। इस बार ऐवान धाड़े मारता हुआ बाहर निकला। महल के कमरे की एक खिड़की खुली। वैसे लिसा ने फिर पूछा कि क्या हुआ और वो इतनी शिद्दत से क्यों रो रहा है। ऐवान ने रोते हुए जवाब दिया, समंदर के बादशाह ने हुक्म दिया है कि कल सुबह फूटने से पहले मोम की इतनी बड़ी इबादतगाह बनाऊं कि सारा शाही ख़ानदान एक वक्त में इसमें इबादत कर सके, और ना बना सका तो मेरे जिस्म पर मेरा सर नहीं होगा। अरे ये तो कोई बड़ी आफत नहीं तुम रो रहे हो, इससे भी बड़ी आफतें तो आइंदा आने वाली हैं। जाओ, अल्लाह का नाम लो और सो जाओ। रात के फैसलों से सुबह के फैसले बेहतर होते हैं। ऐवान शहज़ादा सोने के लिए रवाना हो गया। वैसे लिसा महल के बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहा, दुनिया में जहाँ भी हो तुम, ए मेरी शहद की मक्खियों, ए मेरी मेहनत करने वालियों, फौरन चली आओ ए, और अपने मोम से इबादतगाह बनाओ। इबादतगाह इतनी बड़ी हो कि हमारा सारा शाही ख़ानदान एक वक्त में अल्लाह की इबादत कर सके। ये इबादतगाह सुबह तक तैयार हो जाना चाहिए। अब जब सुबह ऐवान होकर उठा और बाहर आया तो उसने देखा कि मोम की बड़ी सी खूबसूरत इबादतगाह तैयार है। वो दौड़ता हुआ समंदर के बादशाह के पास गया और हुक्म की तामील की इतला दी। समंदर के बादशाह ने ऐवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, शाबाश ऐवान, तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। ये काम दूसरा कोई भी नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अपना जानशी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी सल्तनत के मालिक बन जाओगे। मेरी 13 बेटियों में से किसी एक को मुंतखब करो और अपनी बीवी बना लो। यकीनन शहजादे ऐवान ने वैसी लिसा को अपने लिए मुंतखब किया। इसी वक्त इसकी शादी का इत्माम किया गया। 3 दिन तक शादी की खुशियां मनाई गईं। 3 दिन तक दूर दूर से मेहमान आते रहे, मुबारकबाद देते रहे और अच्छे अच्छे खाने खाते रहे। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए। नौजवान जोड़ा यानी शहजादा ऐवान और उसकी खूबसूरत बीवी शहजादी वैसी लिसा हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन खुशियां कब तक और कैसी? परदेश में, वतन से दूर, माँ बाप की याद कभी कभी आने लगती और दिल चाहता कि जाए और अपने अजीज़ों से मिले। अपने वतन के दर दीवार देखे। यही कुछ शहजादा ऐवान के साथ हुआ और उसके दिल में छुपी हुई ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी इस कि किसी तरह एक बार अपने अजीज और मुकद्दस वतन जाए। वो लाख ना चाहते हुए भी इस ख्वाहिश को ना दबा सका। वो बहुत अफसोसदा रहने लगा। एक दिन वैसी लिसा ने पूछ ही लिया, मेरे सरताज, क्या बात है, कुछ दिनों से आप में कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ। आप कुछ खोए खोए से और अफसोसदा रहते हैं, मुझे बताइए क्या बात है। हाय वैसी लिसा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, हर तरह का आराम है, मुझे चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक बात मैं लाख भुलाना चाहूँ भुला नहीं सकता। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं यह ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही है। वो ये कि मुझे अपने माँ बाप की याद आती है, इन्हें देखना चाहता हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ। मैं ना कहती थी कि आफतें तो आगे आएंगी, असल आफत तो अब आई है। मेरा खौफनाक बाप कभी भी ना चाहेगा कि तुम यहाँ से जाओ। अगर इसे ज़रा सा शक भी हो गया तो वो हमें मुआफ़ नहीं करेगा। हमें बहुत ही सब्र और चालाकी से ये काम करना होगा। वैसी लिसा ने चुपके चुपके सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। एक रात इसने अपने ख्वाबगाह के दरवाज़े बंद किए, तीनों कोनों में थूका और चौथे कोने से जहाँ महल के बाहर जाने के लिए खुफिया रास्ता था, अपने शोहर के साथ फरार हो गई। दूसरे दिन समंदर के बादशाह ने शहजादा ऐवान और वैसी लिसा को पेशी के लिए बुलाया। कासिद ने शहजादा ऐवान के ख्वाबगाह का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, उठिए शहजादा ऐवान और शहजादी वैसी लिसा, बादशाह ने आप लोगों को बुलाया है। हम लोग रात को देर से सोए थे, हमें सोने दो। ख्वाबगाह के एक कोने से वैसी लिसा के थूक ने जवाब दिया। कासिद ने बादशाह तक पैगाम पहुँचा दिया। बादशाह हंसा और कहा, अच्छा आज सोने दो, कल सुबह बुला लाना। दूसरे दिन कासिद पहुंचा और आवाज़ दी। इस बार दूसरे कोने के थूक ने जवाब दिया कि अभी थोड़ा और सोने दो। कासिद फिर खाली हाथ वापस चला गया। तीसरे दिन बादशाह ने बहुत ही नाराज़गी के साथ कहा कि अब खाली हाथ ना लौटना। कासिद ने तीसरे दिन शहजादे ऐवान की ख्वाबगाह पर जाकर आवाज़ दी। अंदर से तीसरे कोने के थूक ने जवाब दिया, हमें आज भी थोड़ा सा सोने दो। कासिद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर आवाज़ दी। अंदर से तीसरे थूक ने जवाब दिया, हम लोग उठ गए हैं, मुंह हाथ धोकर बाहर आएंगे। कासिद फिर इंतज़ार करने लगा, बहुत देर हो गई। इसने फिर आवाज़ लगाई, अंदर से जवाब आया, हम कपड़े पहन रहे हैं। कासिद फिर इंतज़ार करने लगा, फिर आवाज़ दी, जवाब आया, हम खाना खा रहे हैं। यूं शाम हो गई, कासिद नाकाम वापस लौटा। समंदर के बादशाह को जलाल आ गया। उसने हुक्म दिया, जाओ और इन्हें हर हाल में पकड़ लाओ। इस बार एक फौजी दस्ते को साथ भेजा गया। कासिद ने फिर दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी। अंदर से कोई जवाब ना आया, ना कोई हरकत हुई। बादशाह के फौजियों ने ख्वाबगाह का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। ख्वाबगाह में कोई भी ना था, ख्वाबगाह खाली पड़ी हुई थी। बादशाह के नौकरों ने बादशाह को बताया कि वो भाग चुके हैं। समंदर के बादशाह को जलाल आ गया। इसने तेश में आकर कहा, फौरन तेज़ रफ्तार घोड़ों के एक दस्ते को उनको पकड़ लाने के लिए भेजा। 3 दिन और 3 रातों में शहजादा ऐवान और वसीलीसा बगैर खाए पिए और बग़ैर आराम किए अपनी तेज़ रफ्तार घोड़ों पर बहुत दूर निकल चुके थे और अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। सफ़र के दौरान वसीलीसा ने अपने घोड़े को रोक दिया। अपने शोहर शहजादे ऐवान से बोली, ज़रा घोड़े से उतरकर ज़मीन पर कान लगाकर सुनो, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। शहजादा घोड़े से उतरा और उसने ज़मीन पर झुक कर कान लगा दिए। कुछ देर सुनने के बाद बोला कि कुछ फासले से घोड़ों के टापों की और लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारा पीछा किया जा रहा है, वसीलीसा ने कहा और घोड़े पर से उतर आई। और इसने अपने जादू के ज़ोर से ऐवान को बूढ़े चरवाहे में बदल दिया, अपने आप को घोड़ों को कमज़ोर सी भेड़ों में तब्दील कर दिया। थोड़ी देर में समंदर के बादशाह के सिपाहियों का दस्ता चरहावों के करीब आया और पूछने लगा, ए बूढ़े चरहावे, तुमने एक नौजवान शहजादे और शहजादी को यहाँ से गुजरते हुए तो नहीं देखा? नहीं, नेक लोगों नहीं देखा। मैं यहाँ 40 साल से मवेशी चरा रहा हूँ, ना तो यहाँ कोई खून खार जानवर आया है और ना किसी इंसान का गुजर हुआ, चरवाहे ने जवाब दिया। पीछा करने वाले वापस बादशाह के पास गए और बादशाह को सब कुछ बता दिया कि 4 दिन के सफ़र के बाद भी हमें कोई ना मिला, सिर्फ 4थे दिन एक बूढ़ा चरवाया और उसकी चंद मरियल सी भेड़े मिली थी। चरवाए ने बताया कि वो 40 साल से वहाँ भेड़े चरा रहा है, ना तो इसने कभी कोई खून खार जानवर देखा है और ना कोई इंसान। तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? समंदर के बादशाह ने गुस्से में कहा, वही तो शहजादा ऐवान और वसीलीसा थे। अब बादशाह ने ताज़ा दम हो दस्ते को शहजादा ऐवान और वसीलीसा का पीछा करने के लिए भेजा। इसी दौरान ऐवान और वसीलीसा और दूर निकल चुके थे। जब 6 दिन का सफ़र दोनों ने बग़ैर आराम और बग़ैर कुछ खाए पिए मुकम्मल कर लिया, तो 7वें दिन के सफ़र के शुरू पर वसीलीसा ने अपना घोड़ा रोक दिया और शहजादे ऐवान से बोली, ज़रा घोड़े से उतरकर ज़मीन पर कान लगाकर सुनो, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। शहजादा ऐवान घोड़े से उतरा और ज़मीन पर झुककर कान लगाकर सुनने लगा। थोड़ी देर सुनने के बाद बोला, घोड़ों की टापों और लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारा पीछा किया जा रहा है। ये कहकर खुद भी घोड़े से उतर आई और जादू के ज़ोर से ऐवान को बूढ़े पादरी में तब्दील कर दिया और ख़ुद को एक पुरानी बोसीदा सी इबादतगाह में और घोड़ों को मरियल से गधों में तब्दील कर दिया। बादशाह के भेजे हुए सिपाहियों का दस्ता करीब आया और बोला, बूढ़े पादरी को आवाज़ दी, ए बड़े मियाँ, आपने यहाँ से किसी शहजादे और शहजादी को तो जाते हुए नहीं देखा या किसी चरवाहे को इसकी मरियल भेड़ों के साथ जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं अल्लाह के नेक बंदो, नहीं देखा। 40 साल से इस इबादत गाह की खिदमत कर रहा हूँ, इस अरसे में तुम्हारे सिवा किसी का भी गुजर नहीं हुआ। पीछे करने वालों ने इबादत गाह के खंडरात की तलाशी ली और वापस बादशाह के पास चले गए। बादशाह को तमाम किस्सा सुनाया। बादशाह का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया। अब बाकी हिस्सा हम इसका थर्ड पार्ट ज़रूर इंशाल्लाह आपको फिर सुनाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आप सबका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।